जी
मेरे आपसे 2 सवाल आते हैं कि इस वक्त जो मीडिया में मुसलमानों के खिलाफ प्रोपेगेंडा हो रहा है, मसलन सलाम पर जो काफी शाये हुए और जिस तरह मुसलमानों को बदनाम किया जा रहा है, कभी टेररिस्ट कहा जा रहा है, तो इस तरह क्या आप समझते नहीं है कि काफी हद तक कसूर मुसलमानों का खुद है? मसलन मैं एक एग्जाम्पल को करना चाहूंगा कि हमारी सेकेंडरी यूनिवर्सिटी को ले लें, यहाँ पर हर हॉस्टल के सामने इंग्लैंड का जो है वो झंडा बनाया गया है, यानी कि जो भी शख्स गुजरता है उसके ऊपर से पाँव रखकर गुजरता है। एक दफा हजरत उमर को किसी ने गाली दी तो आप भी जवाब देने लगे, तो आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था कि
हेलो,
उमर कुफार को गाली मत दो, ऐसा ना हो कि वो तुम्हारे खुदा को भी गाली दें तो ये तुमसे बर्दाश्त नहीं होगा। और दूसरा क्वेश्चन मेरा ये है कि मेहरबानी करके लफ्ज फितर इसका मफहूम क्लियर कर दें।
दूसरा नहीं हूँ
बेदत
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 बेदत। अच्छा, अब मेरी समाज में कुछ ठीक हो गई। जो आपका पहला सवाल है ना कि कसूरवार हम मुसलमान भी हैं, इसका तो इनकार करना आसमान के सूरज को जुटाने वाली बात है। कसूरवार तो हम, अगर कोई ये पूछ ले कि आप लोग एक खाका शाया होने पर तो इतने बेचैन हैं, मुजरब हैं, एहतजाज कर रहे हैं, आप अपने अल्लाह के उस रसूल की तारीफ पर कितना अमल करते हैं? रसूल के हुक्म से 5 वक्त मनारों पर ऐलान होता है या सलाह, आप हिलते ही नहीं, नमाज ही नहीं पढ़ते, 5 वक्त हो अजान का अहतमाम करा, छुप कर भी बावाज बुलंद बुलाया जाता और पहले याद भी दिलाया जाता कि अशहदु अल्लाह अल्लाह अशहदु अन्न मुहम्मद, हम ये दोनों अकीदे रखते हो ना कि अल्लाह एक है, मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आओ नमाज की तरफ नहीं है। जिस उम्मत का ये हाल था कि मैदान जंग में भी आप सूरत निसा पढ़े नमाज नहीं माफ, अल्लाह ने कहा आधे दुश्मन के सामने खड़े हो जाओ, आधे रसूल्ला के पीछे खड़े हो जाओ, जब 2 सजदे कर लो तो ये चले जाएं, दूसरे आ जाएं, उस हाल में नमाज नहीं माफ। कि तुम्हारी जंग आम लोगों की जंग है, तुम तो जमीन पर अल्लाह का कानून जो नाफिज करने के लिए उठे, तो जब अपना आर ये बच्ची बुशरा मर रही है, लोगों की कोठियां पास है, किसी ने खबर नहीं ली, कोई आदमी जो ऐसी तंजीमें नहीं हुकूमत बनाती, अगर महकमा ज़कात बना उसमें करप्शन कितनी, लूट कर खा गए नाजम और दूसरे सब हरामी जो उन्होंने समझा ये खाने यगमा लूट का मार है, गरीबों को नहीं देते, 1000 लिखते हैं और उसके आगे एक और सिफरा डाल देते। ऐसी हालत में अगर कुफार का गिला हम करते रहें तो ये खाम खा की बात है, सोचना तो हमें अपने आप को देखना चाहिए शीशा में कि हमारा मुंह कैसा नजर आता, हम मुसलमान कहलाने के काबिल हैं, रसूलल्लाह की उम्मत वाला कोई हमें काम नजर आता? तो बिल्कुल पहले ये चाहिए के बजाय, और ज्यादा लोग जो हैं पहले रास्ते में कह रहे थे सदीकी साहब, कितने लोग हैं जिनके घर में बुखारी शरीफ का कोई पारा, कुरान मजीद की कोई तफसीर है, या रसूलल्लाह की सीरत का कोई है हिस्सा, कि वो देखते हो कि हमारे रसूल क्या थे, कहाँ पैदा हुए, कैसी जिंदगी गुजारी, सवाल कर लें तो हमें उसके बारे में खबर नहीं। तो अफसोस की बात है कि सिर्फ एहतजाज कर लें, झंडे जो है उनको पांव धरे रोंद, ऐसे आसान काम तो हम कर लेते हैं जो करने के, कि जितना वो दीन के मुखालिफ हैं, होना ये चाहिए था मुसलमान को मुसलमान कर दिया तूफान मगरब, अब ज्यादा दीन की तरफ आ, बच्चा बच्चा कुरान पढ़ता, हदीस रसूल का मुताला करता, दीन पर अमल करता, काफरों के मुंह पर तमाचा लगता कि तुम हमने हमें अपने रसूल से तोड़ना चाहते थे, हम और ठीक हो गए, जो कुताइयाँ दूर के ये नहीं करना, बस एहतजाज वगैरह करके दिल ठंडा कर लेना। इस सवाल ने परेशान तो मुसलमानों को करना ही है कि काबा शरीफ में दुआएं होती हैं, रमजान मुबारक में जब कुरान ख़त्म होता है इमाम साहब पौना पौना घंटा रोते हैं, दुआ करते हैं, लोग भी रोते हैं, कोई असर नहीं होता, होना चाहिए, बिल्कुल अल्लाह ताला को नहीं चाहिए कि अपनी सुन्नत तब्दील करे और हम मुसलमानों की मदद करें, अगर वो ऐसा करे तो उसका भी कोई कैदा कानून, साफ बात है इन मुसलमानों की कोई नहीं सुनेगी, ये बेशक रोएं आसमान हरा देना चीख चीख कर, इन पर मसायब का ही नजूर होना चाहिए, ये मुस्तक कानून खुदाबंदी किसी की रियायत नहीं करता। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम खुद मौजूद थे, सहाबा किराम की जमात थी, वादा था अल्लाह का कि 3000 के जरिए मदद करूँगा, की भी मैदान उहद में फतह हो गई, मगर गलत काम किया कि जहाँ आपने दर्रा पर मुकर कर लिए थे 50 सिपाही, तुमने दर्रा नहीं छोड़े, हम हारे या जीते 40 बाद नहीं आए, अमीर लश्कर कह रहा है अब्दुल्ला बिन जुबैर के भाई हजूर का हुक्म है, रुको नहीं रुके, छोड़ गए, लूट का माल इकट्ठे करने चले गए, 10 आदमी रह गए, खालिद बिन वलीद ने चक्कर काटा और उनको भी कत्ल किया, फतह शिकस्त में बदल गई, और जब रोए चिल्लाए सूरह आल इमरान, अल्लाह ने कहा मैं नबी को क्या करूँ और साहबा को क्यों रसूल तोड़ा, असह तुम रसूल, तुमने रसूल की नाफरमानी की, कानून की खिलाफवर्जी, दर्रा खाली कर दिया, नतीजा निकला था ही, इसलिए साहब मुंह पर तमाचा लगा कि तुम क्या कहते हो कि अल्लाह ताला तुम्हारी खातिर अपनी आदतें बदल दे। इसीलिए अमीर उलमारी इब्न अबी तालिब रज़ियल्लाहु का कौल ये याद रखना चाहिए, सब लोगों तक पहुँचाएँ कि अब दाई बिला अमर, जो करता कुछ नहीं और दुआएं करता ना, कर रामी कौसम बिलावत, वो ऐसे ऐसी कमान से तीर चला रहा है जिसके आगे तंदी नहीं, कोई वो तीर को खींचने वाली बात ही नहीं, तीर क्या करे, पहले काम करो जो तुम्हारे बस में है, पूरा जोर लगाओ फिर अल्लाह से मदद मांगो। इकबाल यही कहते हैं, बाद दुआए नुसरत पैगामी ने, अल्लाह के रसूल की एक तरफ मदद की दुआ होती थी कि अल्लाह मदद कर, और दूसरी तरफ तलवार आमीन कहती थी, आमीन मुस्लिम नहीं तलवार कहती, पूरा असला होता था, कुव्वत होती। अब करते कराते मुसलमान कोई नहीं, इमाम काबा रो या दूसरे क्या बनेगा, और आपने वहाँ की मिसाल दी, मैं तो जाता रहा जानता हूँ कि अब इमाम काबा कितने मजलूम है और हरम शरीफ कितना महबूस है कि इमाम काबा अपनी मर्जी से दुआ नहीं कर सकता, आयत नहीं पढ़ सकता, लिखी देते हैं वो सिर्फ पढ़ देता, कभी फिक्र रह जाता पीछे से पढ़ना शुरू कर, जैसे किताब सुनाई, कोई खिताबत नहीं, कोई लेक्चर नहीं, कोई आज़ादी नहीं कि वो आसानी से आराम से टोके कि क्या कर रहे, सिपाही सामने बैठा होता है कि अगर आयत भी तब्दील की उसी वक्त नोट कर रहे। तो ऐसे लोगों पर अल्लाह की रहमत नाजर, और आप देखते हैं कि वो कब गिलाफ़े काबा लोग चीखे कि आपने ये भी कह दिया, मैंने कब पढ़ो, जब ये शुरू हुआ था उम्मत रोई थी कि काबे को क्या जरूरत है इतने गिलाफ की, करोड़ों रुपया उस पर खर्च होता है, सोने के तार गुजरते हैं, याची लोग भूखे मर रहे हैं और आप काबे पर गिलाफ चढ़ा रहे हैं, और कौन है बानी इसका यजीद प्रीत कि उसने रेशम का लिबास चढ़ाया, बाद से हुक्मराना ये ढोंगर चढ़ लिया, हज़ारों मुरब्बे ज़मीन वक्त मिस्र में काबे का गिलाफ तैयार हो रहा, भाई कुछ बात है करनी, और सोना चढ़ा दिया उसके दरवाजों पर। उलमा लिखते हैं कि वलीद बिन अब्दुल मलिक ज़ालिम था, लोग क्या बोलते हैं, उलमा वहाँ इमाम हुसैन उनके ऊपर घोड़े दौड़ा दिए गए, उलमा बेचारे क्या करें, वरना ये कोई दीन का काम नहीं, हजूर ने पेश बही की थी कि जैसे यहूद और नसारा ने अपने बाद गाह जो है उनको बना संवार दिया, ऐसे ही तुम क़यामत से पहले करोगे, बहुत सोने चांदी की नुमाइशें, सादा हो साफ सुथरी हो खुशबूदार हो सादा मस्जिद, दीवारों पर ये नक्शों नगार और लिखा हुआ, किताबें निकालें, डॉक्टर साहब पूछे फुकहा भी लिखते कि ये सब हराम है, लोगों की तवज्जो नमाज में बढ़ती है, वो देखते रहते हैं इबारतें क्या, जब वो इबारत शिकस्ता होती है वो आते हैं फिर बेदबी होती है उनकी, मगर लोग अपनी मर्जी करते हैं, दीन को नहीं मानते और फिर कहते हैं अल्लाह मदद करे, अल्लाह मदद उनकी करेगा जो अल्लाह के बने, फिर अल्लाह ज़रूर फरिश्तों से मदद कर लेगा और अपनी कुदरत कामला से थोड़े होते ही फंसा देगा, वरना अल्लाह को क्या ज़रूरत पड़ी है कि वो अच्छे काम हमारी नस्बत करें, फिर भी हम कर्मा को करो उनसे बदतर हों, अल्लाह ताला खाम खा पाकि बन, तो अल्लाह का गिला ना करें अपनी शिकायत करें। क्या नहीं आप बिल्कुल सच्चे हैं, अल्लाह ताला उन मासूम बच्चों को क्या करे, वो भी अगर बचे हुए तो समझे उनकी बरकत से हम भी कुछ ना कुछ फिर भी रहत मिल रही, वरना सफ़े से ज़मीन से अल्लाह ख़त्म कर देता, जो बालिग लोग हैं ना अल्लाह उनके अमाल देखता कि इस कौम, वरना तूफान नूह आया तो मासूम बच्चे तो वहाँ भी थे। इमाम इब्ने कसीर ने एक वाक़ा लिखा दिल हिदा देने वाला, कि अगर जब अज़ाब आता अल्लाह बच्चों का ख्याल करे तो उस वक्त करता कि एक माँ थी उसका एक बच्चा था गोद में, जब पानी बढ़ना शुरू हुआ उसने उसको उठा लिया या सीने से लगा, जब और पानी बढ़ा तो उसने अपने कंधों पर उठाया, फिर बेचारी ने सर के ऊपर उठाया, पहाड़ पर चढ़ गई मगर डोब दिया गया डबो दिया गया। तो वहाँ लिखा कि अगर अल्लाह ताला ऐसे धर्मों पर रहम करता तो वहाँ करता कि माँ कितने तरले दे रही थी, मगर नहीं जब सफल पे, और हजूर अलैहिस्सलाम ने इतनी तसल्ली दी कि फैसला तो होगा भाई लोगों के किरदार पर, बाकी जो उनमें बेगुनाह होंगे थोड़े से वो क़यामत के दिन ज़रूर उनसे अलग हो जाएंगे, उनको अल्लाह ताला इनाम देगा, मगर जब वबाए आम आती है और अल्लाह की तरफ से पकड़ो उसमें फिर कहाँ ये फ़र्क किया जाता है, जलजला आता है सब कुछ ले जाता
है। मैं एक बात ये करना चाह रहा था कि हमारे पास कुरान मजीद मतलब असली हालत में मौजूद है, ज़बर ज़ेर का भी फ़र्क नहीं है
जी,
रसूल पाक की सुन्नत जो है वो भी हमारे पास मौजूद है, उलमाए किराम जो है वो जुमे को खुतबे देते हैं, मतलब जितनी तालीमात इस्लाम की महफूज हैं इतनी और किसी मजहब की नहीं है, लेकिन जो नतीजा है उसके मुकाबले में कि सबसे जो बुरी हालत है अखलाकी लिहाज से कानूनी लिहाज से वो इस वक्त मुसलमानों की है। इनका ना कोई आगा है ना पीछा है, ना कोई इस्लाम है ना कोई अखलाक है, कोई चीज नहीं है। अब जब हमारे पास तालीमात भी हैं, उलमा हमें समझाते भी हैं, हमें यह भी पता है कि हमारी पस्ती का सबब क्या है, और हम ये भी उलमा कराम हमें बताते हैं कि किस मतलब जैसे आप फरमा रहे थे कि ईमान की कमजोरी है, ईमान को मजबूत किया जाए, लेकिन ये नजर कुछ नहीं आता, ना ईमान मजबूत हमारा होता है, ना हमारा कोई अमल बेहतर हो रहा है, ना हमें कोई ऐसा लीडर नजर आ रहा है जो हमारी रहनुमाई कर सके। हुकूमतें जो हैं उनके पास ज़राए बड़े हैं लेकिन कोई ऐसी नहीं। वो जो गैर मुसलमान हैं जिनके पास कुछ भी नहीं है, वो हर चीज़ में मुनज़्ज़म हैं, बड़े ऑर्गेनाइज्ड अंदाज से वो काम कर रहे हैं। हमारे पास सब कुछ होते हुए भी हमारे कुछ चीज़ नज़र नहीं आ रही, इसकी क्या वजह है, अमल भी क्यों नहीं होता?
आपने जो कहा ना कि गैर मुसलमान के पास कुछ नहीं, ये तो आपकी नहीं सही तशखीस है। उनके पास तो सारे ज़राए वसाइल हैं, हमारे पास उनके मुकाबले में बहुत थोड़े हैं। वो तो छाए हुए हर चीज़ उनके पास है, मीडिया है, दौलत है, वसाइल है, ये तो उन्हीं के पास हैं। ये तो ना आप कहें कि उनके पास कुछ, तालीमात के बारे में आप देखें, तालीमात जो है उसको कोई टच करता। आप कहते हैं कुरान है, कुरान मजीद को देख लें कि बरकत के लिए खुतबे के आगाज में एक आयत पढ़ लेते हैं, फिर भूलकर भी नहीं पीछे मुड़कर देखते कि आयत क्या थी, उसने मज़मून क्या, उसकी बजाय किससे कहानियाँ, अपने बनाए हुए शेर वगैरह तफरी कि लोग कहते हैं उधर यार तमाशा देखते हैं, थोड़ी देर से मौलवी के पास दागरी मजा ले आए। कोई नहीं, अल्लाह के रसूल जब खुतबा के लिए खड़े होते प्रोफेसर साहब, जो हत्ता कि आपकी आंखें सुर्ख हो जाती और आवाज़ ऊँची हो जाती, और नीचे बैठा मैं ऐसे ही समझता था कि जैसे कोई हमलावर आ रहा है और ये शख्स ऐलान कर रहा है कि बच जाओ बच जाओ। वो लतीफे नहीं होते थे। अब आप देख लें, मुझे दिखाएं ना मसे, आप कहते हैं ईमान बताते, ईमान कहाँ बताते, ईमान की बजाय अपने अपने फिर के हर मस के ऊपर लिख दिया कि ये बरेलियों की है, ये देवबंदियों की है, ये शियों की है, ये फलां की है। कहाँ इस्लाम दीन ये कहता, मस्जिद सारी अल्लाह की, जो शख्स भी क़िबला रुख नमाज पढ़ा रहा, कहाँ किस दीन ने हमें इजाज़त दी कि हम सवाल उठाएं ये फलां फिरके का। सहाबा किराम के आखिर दौर में ये सारे फिरके पैदा हो गए। अब तो कुछ नरम है, बहुत सख्त सर काटते थे। नजदा खारजी था, इब्ने ज़ुबैर थे, बनो मैया थे, एक साल मैदान अरफात में तीनों ने अपने कैंप लगाए थे और बिल्कुल एक दूसरे से खून ले दी इनकी जारी थी। मुसल्ले पर कभी वो खड़े हो गए, हज़रत इब्ने उमरन के साथ नहीं थे, किसी के साथ, मगर जब कोई नमाज पढ़ाता पढ़ लेते। लोगों ने कहा वैसे साथ नहीं देते, कहा फरमाया यार मुसलमानों की खूनरेजी में साथ दूँ, नमाज जो है ये हैया सलाह, जब भी कोई कहेगा और नमाज नमाज क्यों ना मैं पढ़ूँ, नजदा पढ़ाता खारजी कुरान नहीं पढ़ रहा, किबले की तरफ रोकनी। अब ये सब की जब प्रोफेसर साहब नहीं समझ में आता, हर शख्स लिख रहा इमाम सैदा होना चाहिए, सैदा हो गई कि मेरा फिरका, बस जब नमाज ही नहीं मिलकर पढ़नी और दीन का क्या होगा भाई, काफिर तमाशा नहीं इनका बनाएंगे तो क्या बनेगा। इसलिए आप ना कहें कि सब कुछ महफूज है, सब कुछ महफूज है अलमारियों में, वरना कोई नहीं। हाँ, मुल्लाओं की जुबान पर झूठी रवायतें, आप बड़े से बड़े आलम को ले लें, मैं क्या निशानदेही करूँ, जो असम्बलियों में जाकर दर्श देते हैं ना, उनका हाल ये कि वो झूठी हदीसें बयान करते हैं, और जब पूछते हैं मानते हैं, बड़े शहर के आलम हैं बहुत, मानते हैं कि वाकई ठीक नहीं है। हमने अखबार नवीसों को जवेद चौधरी को लिखा कि आप उनका कलम शाया किया, ये लिखो साथ कि ये कोई हदीस नहीं, ये बिल्कुल कहते तौबा तौबा, मैं उनके खिलाफ लिख दूँ, आप बुत बने हुए। इसलिए यार आप यकीन जाने ना कहीं कुरान है मस्जिद में, ना हदीस है, नाम है उनका हदीस की जगह मौजूर बैठे मनगढ़ंत, बिन कुरमा ने छान कर फेंक दिया ना, अलग है शोभा मौजूआत, घड़ी हुई हदीसें हर मौलवी के पास हुआ, शब रात आ गई, मेरा आज आ गया, फला कोई खौफ खुदा नहीं कर रहा, ये तो घड़ी है, उलमा ने नाम ही इनका मौजूद रखा और दस बताया गया फुजान दज्जाल ने घड़ी है, साथ साथ निशान दी। वो इकबाल की बात ठीक है कि सूफी और मौलवी दो थे ना, वो कव्वाली में फंस गए, उनको भी कुरान हजम नहीं होता, कव्वाल की दोनों पर ही उन्हें ना सुरूर आता, मौलवी जो इसका किया अज खतीब और दैलमी गुफ्तारे हु बाईफ हो शाद मुसर कर, ना सही बुखारी ना मुस्लिम, दैलमी ने लिखा खतीब ने लिखा, ये तो वो लोग हैं जो रद्दी लिखते थे उनकी जई फरमाओ। इसलिए आप रोएं मातम करें कि रहबर जो है ना वो गुमराह हो चुके, कहीं उनके पास वो दीन नहीं है, वरना ये हशर ना हो, یہ بالکل نوحہ ہے جو میں پڑھ رہا ہوں، اگر مسجدوں میں ایمان ہوتا اور خطیب کے اپنے اندر بھی ہوتا تو سات دن تو لوگوں میں بجلی بیٹری چارج رہتی، لوگ جاتے تو تقویٰ ہوتا، خوف خدا پر لے کر جاتے. اب کیا بحثیں کہ فاتحہ نہیں پڑھتا اس کی نماز نہیں، وہ کہیں جو پڑھتا پیچھے اس کے میں پتھر. 1400 سال ہو گیا یہ مسئلہ نہیں حل ہوتا کہ مقتدی جو ہے اس کی نماز ہے کہ نہیں، ہاں ڈھیر لگا رہے ہیں کتابوں. اس لیے آپ نہ کہیں کہ ان کے پاس سب کچھ ہے، بس وہ کتابوں میں لکھا ہوا. مسلمانی در کتاب، مسلمانہ در گو. سچے مسلمان قبروں میں چلے گئے، اسلام کتابوں میں بند. نہیں آج ان کا اپنا نقصان بھی ہے، نہ لوگ آنے دیتے ہیں. اگر لوگوں کو صحیح بتائیں وہ مقتدی ناراض ہو جاتے ہیں. مسجدیں ہیں وہاں بن گئے ہیں، ممبر بنے ہوئے ہیں، کوئی اس کا چیئر بنے، پریزیڈنٹ بنا. مسجدوں میں بھی کمیٹیاں، وہ عالم کو دبا کر رکھتے ہیں. اگر وہ ذرا نہیں ان کی مرضی، چلو جی مولوی صاحب چھٹی، ان پڑھ جو ہے نا وہ مسجد پر قابل. عالم بیچارے کو یہ فری ہینڈ ہی نہیں ملتا کہ وہ حق بات کیا. یہ تو شکر کریں، میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کر رہا ہوں. کئی بار میں نے کہا یار میری اپنی زمین نہ ہوتی تو میں بھی ایسے ہی ہوتا کہ جو لوگ کہتے. اب آپ سنتے ہیں نا، کئی سال ہو گئے ڈنکے کی چوٹ کہتا ہوں کہ میں کوئی نہیں اس بات کا پابند کہ یہ حدیثوں کی مسجد ہے. جو بات حق ہوگی بریلویوں کی ہوگی میں اوپر کھڑا ممبر کے کہوں گا کہ ہم رضا خان کی یہ بات حق اور کہتا ہوں. آپ نے سنا نہیں، میں اس کو رحمت اللہ علیہ کہتا ہوں. ناراض ہوتا میں نے کہا رحمت پر آپ کا قبضہ، وہ عالم نہیں تھا. اختلاف لگ گیا، ہم بھی سمجھتے ہیں کہ بات بات نے اس کی درست نہیں، مگر ہماری ساری صحیح ہے. ہم پر وہی آتی ہے، جینے دو لوگوں کو کہ جو عالم کوئی رائے پیش کرتا اس کو پڑھو، وزنی ہے تو قبول کرو، ورنہ اختلاف ادب سے کرو کہ ہمارے خیال میں یہ بات درست نہیں. بس اس سے آگے جہنمی کافر کی یہ حق کیوں آپ کس نے دیا، وہ کلمہ نہیں پڑھ رہے. تو پہلے تو یہ وحدت امت جو میری کتاب بنا مشرق مغرب میں اس کو پھیلایا، ہر جگہ تحفہ دیں کہ کوئی کلمہ بنا اس کو جو کافر کہے گا وہ خود کافر ہو جائے گا. کلمہ پڑھنے کے باوجود آپ اس کو کافر کہیں، آپ اس کے مسئلے کو کہیں کہ میرے خیال میں یہ بات جو ہے نا یہ صحیح نہیں معلوم ہوتی، غلط. بس کفر جو ہے کہ وہ کہے کہ میں نہیں رسول اللہ کو مانتا. اس نے کہا اس کی مسجد میں تو اشہد ان محمد رسول اللہ مناروں پر ہو رہا، اس کے بعد وہ کافر کہاں رہا؟ اختلاف کرنا، یہ کہو کہ یہ بات تحقیق کی روشنی میں درست. جیسے حدیث پاک میرے بھائی نے کہ اس پر جم گئے، شمالی اتحاد سے وائر شروع کر دیا اور بعد میں ایرانی حکومت سے بھی ٹکر، وہ امریکہ کو فائدہ ہو گیا، یہ بھی کچھ لے گئے، ایران کے بھی پیچھے پڑ گیا. اگر یہ سمجھتے یار یہ شیعہ سنیت کا وقت نہیں ہے، یہ باتیں فارغ ہوں گے دیکھی جائیں گی. وہ خلیفے صحیح بنے تھے یعنی وہ تاریخ ہے. اللہ کو مانتے ہیں، رسول کو مانتے ہیں، قیامت کو مانتے ہیں، ساری دین کی باتیں مانتے ہیں. اس پر ہم اکٹھے ہیں، اس کی فکر کریں جو قائم کرنا ہے. کسی نے اچھی حکومت کی ہے بسم اللہ، اگر نہیں کوئی کہتا نہیں حضرت ابوبکر عمر اچھی نہیں حکومت کی، تاریخی ہے معاملہ. اس میں دین کی کیا بات آ گئی کہ وہ مومن نہیں جو وہ کافر نہیں. مگر یہ پروفیسر صاحب بات ہے بڑے کھلے دل کی، کیا کروں. میری تو چونکہ عمر گزر گئی، میں قادیانیوں کا بھی سب ان کے ربا میں جا کر سب کچھ میں نے پڑھا. جانتا ہوں میں ان مولویوں کی طرح نہیں کہ جانتے کچھ بھی نہیں تبصرے کرتے رہے، جانتا ہوں کیا گمراہی ہے اور باقی باتیں کیا صحیح. پرویز کا بھی پڑھتے نہیں، کیا جیسے پرویز غلام ہے ایسا تھا. جب کہتا ہوں کوئی کتاب دیکھی ہے، نہیں مولوی کہتے ہیں وہ کافر. کرنے کی بات ہے یا پڑھو، کچھ غلطی ہوگی وہ بھی آپ الا وجل بصیرت پروفیسر صاحب بات ہونی چاہیے، جو کہیں پیچھے روشنی ہونی چاہیے کہ یہ ہے دلیل بیس کی، باقی کافر وغیرہ کی باتوں میں نہ الجھیں. تو آپ یہ خیال کرتے ہیں نا کہ ان کے پاس سب کچھ ہے، کچھ نہیں، انہوں نے لپیٹ کر رکھا ہوا ہے. آپس کے فرقے ہیں، جھگڑے ہیں، کوئی محبت نہیں، پیار نہیں،